الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون مل جائے اطمینان مل جائے کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی بے چینی اس کی لائف میں نہ رہے چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ تاجر ہو بزنس مین ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ بادشاہ ہو ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ کسی طرح مجھے سکون مل جائے کوئی بے چینی میری زندگی میں نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اگر کوئی شخص اس کا الٹا چاہے گا کہ مجھے بے چینیاں مل جائے پریشانیاں مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھاؤ بھائی اس کا دماغ صحیح نہیں یہ پریشانیاں چاہ رہا ہے جو بھی عقل مند ہے جس کا دماغ درست ہے وہ یہی چاہے گا کہ پریشانیاں نہ ہو سکون مل جائے اب جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ جب کوئی پروڈکٹ کوئی مشینری باہر آتی ہے تو کمپنی اس پر پورا تحقیق اور ریسرچ کر لیتی ہے کہ کیا کیا اس میں فالٹ آ سکتے ہیں اور اس فالٹ پر کس طریقے سے درست ہوگا اس میں کیا فالٹ ہوگا تو صرف آئل ڈالنے سے کام چل جائے گا کیا فالٹ ہوگا تو اس کو ریپیئر ہی کرنا پڑے گا ریپلیس ہی کرنا پڑے گا ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق اور مالک وہ جانتا ہے کہ کون سی بیماری سے کس طریقے سے اس کو دور رکھا جائے پریشانیوں سے کس طرح اس کا علاج ہو کیسے اس کی پریشانی ختم ہو جائے وہ طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو لوگ ایمان لائے ان کے قلوب اطمینان کے ساتھ ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ الا بذکر اللہ خوب سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ نے خود علاج بتا دیا کہ جب بھی بے چینیاں پریشانیاں تمہارے دلوں کو بے چین کر دے بے قرار کر دے اس کا علاج اللہ کے ذکر سے ہوگا اللہ کی یاد جس کے لیے قرآن کریم میں لفظ ذکر آیا ہے ایک دوسرے مقام پر ذکر کا لفظ قرآن مجید کے معنی میں استعمال ہوا ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ये एक माना है कुरान मजीद में जिक्र के, और दूसरे माना में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जिक्र, और वो है अल्लाह की याद। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। ए ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, कसरत से, जिसको यूं कहें अनलिमिटेड अल्लाह का जिक्र करो, कोई लिमिट नहीं उसकी। वसब्बिहू बुकरतन व असीला, और उसकी पाकी बयान करो, सुभान अल्लाह कहो, बुकरतन व असीला सुबह शाम। दूसरी जितनी भी इबादतें हैं उसमें कुछ अल्लाह ने लिमिट बता दी, नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ हैं, ज़कात 2.5 फ़र्ज़ है, इसी तरह हज ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन जिक्र के लिए अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं बतलाई, बल्कि कहा और कसीरा, कसरत से याद करो। सूरह अहज़ाब ही में अल्लाह ने 10 सिफ़ात ज़िक्र फरमाई, जिनके बाद अल्लाह ने वादा किया, अअदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार करके रखा है। उसमें एक सिफत वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जिक्र करने वाले, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें, वहां भी जिक्र का लफ्ज मौजूद है और कसरत के लफ्ज के साथ। बल्कि सूरह तौबा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज़ा लकीतुम फ़ियतन फ़स्बुतु वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। किसी आदमी को इस्लाम पेश करने के जो रास्ते हैं उसमें पहला इफ़हाम व तफ़हीम, उसको समझाया जाए, उसको तरगीब दी जाए, उसको बतलाया जाए, इस्लाम के फ़ज़ाइल से आगाह किया जाए, दावत दी जाए उस लोग इस्लाम की। अगर वो नहीं मानता तो जो आखिरी ऑप्शन है वह है क़िताल का, जंग की जाए, जिहाद किया जाए। उस जिहाद के मौके पर एक आदमी मशगूल है अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जंग कर रहा है, उस मौके पर भी अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम किसी जमात से क़िताल करो, मिलो, लड़ रहे हो, फ़ज़्कुरुल्लाह, फ़स्बुतू, साबित कदम रहो, वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह की याद करो, ऐसे मौके पर भी अल्लाह को मत भूलना। इंतहाई मसरूफियत का वक्त है कि एक आदमी किसी से जंग कर रहा है लेकिन फिर भी हुक्म दिया जा रहा है वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को याद करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर गौर किया जाए तो इस आयत में अगर जिक्र का लफ्ज न भी होता तो आयत मुकम्मल हो सकती थी, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज़ा लकीतुम फ़ियतन फ़स्बुतु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालो, जब तुम किसी दुश्मन से मिलो तो साबित कदम रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन अल्लाह ने उज़्कुरुल्लाह का लफ्ज़ यहाँ भी बढ़ा दिया कि अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उसकी वजह यह है कि एक इंसान अपनी जान की, अपने माल की, अपनी रूह की कुर्बानी दे रहा है, हर चीज़ अल्लाह की राह में पेश कर रहा है, उस वक्त भी कहीं उसका ख्याल रियाकारी का ना हो जाए, कहीं नामो नमूद के लिए ना आ जाए, शोहरत और दिखलावा उसको मकसूद ना हो जाए। इसलिए बचाकर कहा गया कि अल्लाह का जिक्र करते रहना। और हदीस में जिक्र की फजीलत जो आई है, फरमाया, हर चीज़ के लिए साफ करने की कोई चीज़ होती है। बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अब इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह अगर दीवारें साफ़ करनी हो ये कोई चीज़ तो उसके लिए अलग चीज़ होती है, भाई इससे साफ़ किया जाए, फला पॉलिश लकड़ी है तो पॉलिश से साफ़ की जाए, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ होती है जिससे उसको साफ़ किया जाता है। वसकारतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह, दिल को साफ़ करना अल्लाह के ज़िक्र से होता है, दिल की सफाई अल्लाह के ज़िक्र से होती है। और दिल क्या है? ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर, और इसमें शैतान बसे ये हो नहीं सकता। खाने काबा को अल्लाह ताला ने, अल्लाह का घर है, दुश्मनों ने हमला किया, अब्रहा ने, अल्लाह ने कंकरियों के जरिए, परिंदे कंकरी छोड़ रहे हैं और वो हलाक होते जा रहे हैं, मामूली चीज़ें उस हाथी के मुकाबले में इन परिंदों की क्या हैसियत थी, उस हाथी के मुकाबले में इन कंकरों की क्या हैसियत थी, लेकिन अल्लाह ने उन दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। ठीक इसी तरह जब अल्लाह के घर में, हमारा दिल जो अल्लाह का घर है, इसमें शैतान जब कोई वसवसा डालना चाहे, जिक्रुल्लाह के एक कंकरी जाएगी वो दूर हो जाएगी, जिक्रुल्लाह की कंकरी से ख़त्म होता जाएगा। बल्कि सूरह मुजादला में अल्लाह ने फरमाया, शैतान का सबसे पहला हरबा जो होता है, आप किसी दुश्मन से मिलें या कोई अजनबी जिसके पास कोई हथियार हो, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, हैंड्स अप, हाथ उठा लो, तुम्हारे हाथ में कोई नुकसान देने वाली चीज़ हो, उससे हमको नुकसान न पहुंचे, हाथ उठा लो, उसके बाद फिर आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह शैतान जब हमला करता है दिल पर, सबसे पहले वो दिल को गाफिल कर देता है, अल्लाह से गाफिल कर दो और उसके बाद उसमें जम जाता है, फिर वो गुनाहों पर, गुनाहों के ख्यालात लाता है, गुनाहों पर आमादा करता है। अल्लाह फरमाते इस्तहवदा अलैहिम अश्शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, शैतान ने उन पर गलबा हासिल कर लिया, फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, उनको अल्लाह का जिक्र भुला दिया, ये हैंड्स अप कह के कह दिया था तुम्हारा हथियार हटा लो। जिक्रुल्लाह एक हथियार है जिससे हम शैतान को दूर कर सकते थे, शैतान को भगा सकते थे, लेकिन उसने क्या कहा, हैंड्स अप, गफलत में डाल दिया। फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान, ये शैतानी जमात है जो शैतान के गलबे में आ चुकी, जिन्होंने जिक्रुल्लाह से गफलत इख्तियार कर ली, उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्न हिज़्बश्शैतान हुमुल खासिरून, जो शैतानी जमात है वो खसारे में, टोटे में, नुकसान में है। तो अल्लाह का जिक्र जब तक रहेगा दिल में, शैतान वसवसा नहीं डाल सकता। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनआम के आखिर में, इन्नल लदीना तक्कौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब उनको, जो लोग तक्वा इख्तियार किए हुए हैं, जब उनको शैतानी कोई जमात आती है, शैतान का कोई हमला दिल पर आता है, तज़क्करू, फौरन वो जिक्र करते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, फिर उनके लिए राहें खुल जाती हैं। तो जब इंसान जिक्र करेगा, अल्लाह को याद करेगा, तो शैतान उसके दिल से निकल जाएगा, शैतानी वसवसे निकल जाएंगे, और जैसे ही अल्लाह के जिक्र से गफलत इख्तियार की, शैतान उस पर हावी हो जाए। अब ये जिक्र कैसा करना, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज को गया तो मैंने एक शख्स को देखा जो गिलाफ काबा को थामे हुए दुआएं कर रहा है। मैंने बतौर कश्फ के उसके दिल पर तवज्जो दी कि देखें इसका दिल कहाँ है, तो मैंने देखा कि उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। उसने खाने काबा के गिलाफ को इसलिए पकड़ा हुआ है कि उसके साथी देखें और कहें हाँ इसने गिलाफ काबा पकड़ के दुआएं की है। उसके दिल में ये जज्बा उस वक्त है। और फरमाते हैं कि मैं एक आगे बढ़ा, जब मीना पहुँचा हज के दिनों में, तो मैंने देखा कि एक आदमी कोई चीज़ बेच रहा है, खाने पीने की चीज़ें, और आपने देखा होगा मीना में ज़्यादा लोग खाने पीने की चीज़ों पर पड़ते हैं, तो हुजूम है, कोई ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कोई चेंज दे रहा है, लेकिन उसका दिल को मैंने देखा कि अल्लाह की याद में मुतवज्जे है, यानी हर वक्त वो अल्लाह की तरफ कनेक्शन लगाए हुए है। जाहिर में नज़र आ रहा है कि बिजनेस में मशगूल है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भी आप भूल जाएं अल्लाह को याद करें। और याद करने का तरीका क्या होगा, जो बुजुर्ग बतलाते हैं, इसमें ज़ात को याद करना। कुछ लोगों को ये इश्काल है कि अल्लाह अल्लाह जो कहा जाता है ये साबित नहीं, हालांकि हदीस में साबित है। एक तो कुरान मजीद की आयत सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह फरमाते हैं, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का नाम याद करो। जब आपसे पूछे अल्लाह रब का नाम क्या, हम कहते हैं अल्लाह, और तमाम उलमा के इत्तेफाक से अल्लाह जो है ये अल्लाह का इसमें ज़ाती है, बाकी नाम सिफाती है, रहम करने वाला, करम करने वाला, पैदा करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला, ये सिफाती नाम है, लेकिन नाम इसमें ज़ात जो है अल्लाह है, और इसी नाम को याद करने का हुक्म दिया गया। इसका मतलब अल्लाह 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 करना। कोई कहता है कि एक से ज्यादा मरतबा अल्लाह कहना, हदीस में आता है ला तकूम अस्साअतु हत्ता युकालु फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, कयामत कायम नहीं होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा, यानी अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी रहेंगे वहां तक कयामत कायम नहीं होगी। इसका मतलब यहां भी अल्लाह अल्लाह दो मरतबा है, एक मरतबा कहने से भी साबित हो सकता था कि जब तक ईमान वाले बाकी रहेंगे वहां तक कयामत कायम नहीं होगी, जब तक जमीन में अल्लाह का नाम लिया जाएगा बाकी कयामत कायम नहीं होगी, लेकिन दो मरतबा कहा गया अल्लाह अल्लाह। कुछ लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह के इस पर इश्काल है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार जो दोहराते हैं ये कहां साबित है। उसका जवाब यह है कि जब मरते वक्त आदमी मौत से करीब है तो उसको क्या कहा गया, भाई कलमे की तलकीन करो, उसके पास खड़े रहकर बार बार कलमा दोहराओ, ये मत कहो कि कलमा पढ़, बल्कि सिर्फ आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो उस वक्त बड़ी परेशानी में है, बड़ी मुसीबत में है, उसकी जान निकाली जा रही है, रूह निकल रही है उसकी, ऐसे वक्त में हो सकता है वो परेशानी में इनकार कर दे पढ़ने से, इसलिए आप उसको हुक्म न करो बल्कि सिर्फ उसके पास खड़े रहकर कलमा दोहराते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला, ये कलमे की तलकीन से कलमे का जिक्र साबित हो गया। जिस तरह आप उस शख्स को दोहरा रहे हैं जो मरने के करीब है, आदमी ये सोचे मैं भी हर वक्त मरने के करीब, पता नहीं कौन सा लम्हा मेरा आखिरी लम्हा हो जाए, इंसान को अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं किस वक्त उसकी जिंदगी खत्म हो जाए और किस वक्त वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, हर लहजा हर लम्हा मौत का धड़का लगा हुआ है। तो यूं समझें कि हम अपनी नफ्स को कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुरान मजीद से भी साबित है और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन आयत इरशाद फरमाई, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बल्कि हदीस में आता है तुम जिक्र करोगे दुनिया के अंदर, अल्लाह तुम्हारा तज़किरा फरिश्तों के सामने करेंगे, मलाए आला में किया जाएगा। जिस वक्त बंदा पुकारता है दुआएं करता है, फरिश्ते जब उसकी दुआओं को सुनते हैं तो दो किस्म का उन पर रिएक्शन होता है। जो रिएक्ट करते हैं फरिश्ते, बाज बंदों के बारे में कहते हैं अच्छा मानूस आवाज है, मानूस जबान से अदा की गई है, मतलब ये बार बार अल्लाह का नाम लेता रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, अल्लाह की इबादत करता रहता है और साथ ही साथ आज दुआएं मांग रहा है। किसी के बारे में उनका रिएक्ट ये होता है, कहते हैं ओ अजनबी आवाज है, अजनबी जबान से अदा हुई है, यानी कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, आज परेशानी आई है तब दुआएं कर रहा है, यूं तो कभी नहीं आया मस्जिद में लेकिन आज मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई बड़ी परेशानी सामने आई है तब मस्जिद में आया है। तो ये फरिश्ते भी आवाजों को पहचानते हैं, इसलिए जब अल्लाह को याद करेंगे बार बार, फरिश्ते भी उसको पहुंचाने में अच्छा ये मानूस आवाज है, और अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं जो उसके साथ लव लगाए हुए है, कनेक्शन उसका मजबूत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जिक्र से कुरान मजीद मुराद दिया जाए, जैसे कि कहा गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, उसका जवाब यह है कि कुरान मजीद के बारे में जिक्र का लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है, हदीस में तिलावत कुरान को और जिक्र को अलग भी जिक्र किया गया। एक सहाबी आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मैं अल्लाह के साथ राबते में रहूं। आपने फरमाया अलैका बिज़िक्रिल्लाह व तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह, तुझ पर लाजिम है कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करता रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे। इससे मालूम होता है कि दो चीज़ें अलग अलग भी हैं, कुरान करीम की तिलावत मुस्तकिल अजर व सवाब रखती है और अल्लाह का जिक्र करना ये मुस्तकिल अजर व सवाब रखता है, इसका अलग माना है। और जिक्र करने से क्या होता है, जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है, जब जब अल्लाह को याद करेंगे दिल मुतमईन हो जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएगी और सबसे बड़ी चीज़ जो है शैतानी वसवसे दिल से निकल जाएंगे। आदमी ज़्यादा परेशान इसी वजह से है, शैतानी वसवसे दिल में आ रहे हैं, फुना बुराई का ख्याल, फुना गुनाह का इरादा, जब शैतानी वसवसे निकल जाएंगे दिल को सुकून हो जाएगा, और दिल को सुकून मिल जाना ये एक बहुत बड़ी दौलत है। जो आदमी आज परेशानियों में मुबतला है और ज़्यादातर किसी न किसी जगह इलाज के लिए दर पे है, अगर वो अल्लाह का जिक्र करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। घरों में नहुसतें इसलिए हैं, बेबरकतियाँ इस वजह से हैं, आपस में इख्तलाफात इसी वजह से हैं कि हमने घरों में अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया। घरों से कुरान की तिलावत निकल गई, जिस वक्त से उठते हैं रात तक टीवी ऑन है और उसमें खुराफात चल रही है, बेहयाई के प्रोग्राम देखे जा रहे हैं। पहले किसी ज़माने में फजर की नमाज के बाद घर से निकलते थे या मस्जिद से घर जाते थे, कुरान की तिलावत की आवाज़ें सुनाई देती थी। अब आप सच बताएं कि ऐसा आपने कभी सुना? वो ज़माने लद गए, ख़त्म हो गए। अब दूसरी आवाज़ें घरों से आती हैं लेकिन अल्लाह के जिक्र की या तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं आई। तो कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र ये हमारे लिए लाजमी है और एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा घर भी दुरुस्त हो जाएगा, हमारे दिल की कैफियत दुरुस्त हो जाएगी। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबकल मुफर्रिदून, आगे बढ़ गए मुफर्रिदून। सहाबा किराम ने पूछा मुफर्रिदून कौन है? आपने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जो लोग, जो मर्द और जो औरतें अल्लाह का जिक्र कसरत से करती हैं वो आगे बढ़ गए, जिक्र करने वाले आगे बढ़ गए। एक और हदीस में जो आपने बारहा सुनी होगी तालीम के मौके पर, कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर हैं जब लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वहां उनको घेर लेते हैं और फिर अल्लाह के सामने उसकी रिपोर्ट देते हैं। और एक दूसरी हदीस में यह भी आया है कि जब कोई कुछ लोग जमा होते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, फरिश्ते उनको हर तरफ से घेर लेते हैं। जब अल्लाह की रहमत किसी जगह आ जाएगी तो फिर वहां बेचैनी कहां रहेगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस वजह से अल्लाह के जिक्र की तलकीन की जाती है, ताकीद की जाती है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखिए हुस्न थे, हसीन, बहुत खूबसूरत, जिस वक्त भाइयों ने बेचा है 40 दिरहम से कम में बेचा है, दराहिम महदूदा, 40 से कम दिरहम में उनका सौदा हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, अल्लाह के साथ राबता है, और जब नबूवत अता फरमाई तो क्या बन गए? बादशाह बना दिए गए। कहाँ तो ये हालत, कहाँ वो हालत आ गई। इसी तरह जिक्र करने की वजह से हमारे दिल के हालात बदल जाएंगे, हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा, फिर परेशानियां हमारे दिल में नहीं आ सकती, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र वहां पर है। और जिक्रुल्लाह के लिए क्या होता है, आदमी अगर अकेला जिक्र करता है तो कुछ दिन तक करता है, उसके बाद छूट जाती आदत। अगर इज्तिमाइयत के साथ जिक्र किया जाए तो पाबंदी रहती है कि अच्छा फला दिन जिक्र होने वाला है, भाई आइए उस मजलिस में शिरकत कर लेंगे, सब जिक्र कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह मक्की मस्जिद में भी, इस मस्जिद में भी हर तफसीर के प्रोग्राम के बाद जिक्र की मजलिस होगी अब, और इंशाअल्लाह उसका प्रोग्राम जो लगा हुआ है संडे जो तफसीर होती है वो इशा के बाद होगी अब, और तफसीर के बाद थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करेंगे। वैसे जो हुक्म दिया जाता है वो सुबह और शाम, बाद लोग इसका भी सवाल करते हैं सुबह शाम क्यों अल्लाह का नाम लेना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या फरमाया? वसब्बिह बिल आशिय्य वल इबकार, सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। दूसरी जगह बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम अल्लाह को याद कीजिए। तो इस तरह के कई जगह कुरान मजीद में ये बात बतलाई गई कि दो वक्त स्पेशली अल्लाह को याद करना है, और वैसे हमारा ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, ये प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। कि जिक्र कल्बी मतलब ये कि हम कोई भी काम कर रहे हों लेकिन दिल अल्लाह की याद की तरफ। कोई कहे भाई दूसरे काम करते वक्त अल्लाह कैसे याद रहेगा, उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, एक आदमी ड्राइविंग कर रहा होता है, घर उसकी कार के अंदर दूसरे लोग मौजूद हैं, उनसे वो बात भी कर रहा है, उसकी जबान इस्तेमाल हो रही है, उसके कान वो भी इस्तेमाल में एंगेज हैं, उनकी बातें सुन रहा है, और ध्यान उनकी तरफ मुतवज्जे भी है, पैर नीचे ब्रेक की तरफ भी है और एक्सीलेटर की तरफ भी है, हाथ उसके स्टीयरिंग पर लगे हुए हैं, पूरा जिस्म इसका है, लेकिन ध्यान उसका हर वक्त कहाँ है, सामने है। कोई गाड़ी आ रही है उसकी तरफ मुतवज्जे है, ट्रैफिक लाइट लाल हो रही है उसकी तरफ मुतवज्जे है। तो ये तमाम कामों को करते हुए, जबकि इसका हाथ बिजी, पांव बिजी, इसके आंखें बिजी, कान बिजी, सब बिजी है, फिर भी ये अपना काम बराबर कर रहा है और हर वक्त उसका ध्यान सामने रोड पर जरूर है। ठीक इसी तरह मोमिन जो भी काम कर रहा है, मुलाजमत कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, हर वक्त उसके दिल में अल्लाह मौजूद रहे। अगर उसके दिल से अल्लाह निकल गया तो फिर परेशानियां उसके दिल में आ जाएगी, शैतानी वसवसे उसके दिल में आ जाएंगे। और जिक्र के साथ इल्म का एक राबता है, इससे पहले भी गुज़िश्ता मजलिस में बयान किया था और बहुत से लोगों ने नाम लिखवाए हैं कि किस तरीके से हम कुरान मजीद को सीखें, कुरान मजीद का तर्जुमा सीखें। एक एक आयत, हदीस में आता है किसी एक मसले का मालूम कर लेना खैर मिन अल्फ रकातिन, हज़ार रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। किसी एक मसले को आपने जान लिया, उसका इल्म हासिल कर लिया, एक आयत का तर्जुमा आपको पता चल गया, ये हज़ार रकात नफल नमाज से बेहतर है। तो ये जो सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है ताकि अडल्ट क्लास कायम हो जाए और जो लोग जिनकी उम्रें हो चुकी है मकतब और मदरसे में नहीं जा सकते उनके लिए स्पेशल कोर्स बनाया गया है और इंशाल्लाह उसके लिए उलमा आज भी आने वाले हैं, ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू होगी। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो मौजूद रहें ताकि उनसे और ज़्यादा मालूमात हासिल करें, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या कोर्स होगा, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह इल्म और ज़िक्र के इस राबते से आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा, दिल रोशन हो जाएगा। और ये दिल अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह का ज़िक्र रहे, ये सबसे बड़ी बात है। हक़ तआला शानहु हम तमाम को अल्लाह की याद करने और इल्म की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।